ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तीसरा अध्याय चौथा श्लोक क्रमांक 21। सोहम तत् दर्शन अल्लाद वियोग अतियुत प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य बदर्याश्रम मंडलम। सोहम तद्दर्शनालाद वियोगार्थी युत प्रभो गमिष्ये दैतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। सोहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्थी युत प्रभो गमिष्ये दैतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। सोहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्थी युत प्रभो गमिष्ये दैतं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्। सो हम इस प्रकार स्वयं मैं तत उसका दर्शन दर्शन आह्लाद आनंद वियोग विरह अतियुत क्लेशाभिभूत प्रभो मेरे प्रिय स्वामी गमिष्ये जाऊंगा दैतम इस प्रकार उपदिष्ट तस्य उनके बद्रियाश्रम हिमालय में बद्रिकाश्रम मंडलम साहचर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। मेरे प्रिय विदुर, अब मैं उनके दर्शन के आनंद से वंचित होने के कारण पागल सा हो रहा हूं, और जैसा उनके द्वारा मुझे आदेश दिया गया है, मैं इस विरह व्यथा को शांत करने के लिए हिमालय में साहचर्य प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम को जा रहा हूं। तात्पर्य, उद्धव के स्तर का भक्त भगवान श्री कृष्ण के वियोग और मिलन की दुहरी अनुभूति करता हुआ निरंतर प्रभु के साहचर्य में रहता है। विशुद्ध भक्त भगवान की दिव्य सेवा से क्षण भर के लिए भी विरत नहीं होता। विशुद्ध भक्त का मुख्य व्यवसाय भगवान की सेवा का संपादन है। भगवान का वियोग उद्धव के लिए असहनीय था, और इसलिए भगवान के आदेश का अनुसरण करते हुए उन्होंने बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान किया, क्योंकि भगवान का आदेश और स्वयं भगवान अभिन्न हैं। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश के परिपालन में लगा हुआ है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं हो सकता। कृष्णा, इस अध्याय का शीर्षक है श्री विदुर मैत्रेय मिलन, और उद्धव जी यहां पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका जो आदान प्रदान हुआ उसका विवरण दे रहे हैं। जैसे कि श्लोक में वो कहते हैं कि इन भगवान श्री कृष्ण के वियोग में मैं पागल सा हो रहा था, भाव विभोर अवस्था है ये एक। और इसके साथ साथ उद्धव जी कहते हैं कि हालांकि मैं पागल सा हो रहा था, परंतु भगवान के जो आदेश उनका पालन करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान किया। और श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, विशुद्ध भक्त भगवान की दिव्य सेवा से क्षण भर के लिए भी विरत नहीं होते, क्षण भर के लिए भी। अब भगवान से जब भक्त आदान प्रदान करते हैं तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम इस सिद्धांत को जानते हैं कि एक है संभोग और दूसरा है विप्रलंब। और व्याकरण के दृष्टिकोण से संभोग और विप्रलंब ये दोनों विपरीत हैं। संभोग का अर्थ है मिलन और विप्रलंब का अर्थ है वियोग या बिछड़ जाना। यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अंतिम जो वाक्य लिखे हैं वो बहुत ही सुंदर है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश के परिपालन में लगा हुआ है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग कभी नहीं हो सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की और कुछ हिप्पी कुछ अमेरिकी वो जब प्रभुपाद के भक्त बने, शिष्य बने, और कुछ समय पश्चात अब श्रील प्रभुपाद भारत आने का निश्चय किए, तो ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य अब इतने घनिष्ठ संबंध में थे श्रील प्रभुपाद के कि वो श्रील प्रभुपाद को कहने लगे कि आपके वियोग में हम कैसे भक्ति कर पाएंगे, कैसे हम जी पाएंगे। कुछ ही अंतराल में इन शिष्यों को श्रील प्रभुपाद से इतना प्रेम हो चुका था कि अब वो श्रील प्रभुपाद के जाने की बात सोचते ही वो घबरा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं जहां कहीं पर भी रहूं, यदि मैं भगवान की सेवा में रत हूं, यदि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं, और आप लोग जहां कहीं पर भी रहो, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत हो और महामंत्र का जाप कर रहे हो, तो हम जुड़े हुए हैं, कोई वियोग नहीं। तो यहां पर हालांकि इस एक श्लोक में उद्धव जी वो कह रहे हैं अपने विषय में कि मैं पागल सा हो रहा था भगवान के वियोग में, परंतु भगवान के आदेशों का जब मैंने पालन किया तब फिर भगवान से संभोग इसका भाव उद्धव जी में देखा जा रहा था। तो हम लोग जो साधना भक्ति में लगे हैं, इसके पिछले कुछ श्लोकों में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि मेरे गुरु, हालांकि भगवान को जगत गुरु भी कहा गया है। तो उद्धव जी, क्योंकि डायरेक्टली भगवान ने उद्धव जी को जैसे कि गुरु शिष्य को आदेश देते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो अर्जुन के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण गुरु थे, वैसे ही श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता है और उद्धव गीता हजारों श्लोक हैं, भगवत गीता तो 700 श्लोक है, 700 श्लोक से भी ज्यादा है उद्धव गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात डायरेक्टली उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान रहे हैं। तो अब ये गुरु शिष्य का जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण में और उद्धव जी में, यहां पर इस एक श्लोक में उद्धव जी उसको सेवा से प्रस्थापित कर रहे हैं, सेवा भाव, कि गुरु शिष्य का जो संबंध, चाहे वो संभोग का हो या विप्रलंब का, जब शिष्य गुरु के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका संग करते हैं तो शिष्य का एकमेव रिश्ता गुरु के साथ क्या है? सेवा का। और जब बाहरी रूप से वो गुरु के वियोग में है तो एकमेव रिश्ता गुरु के साथ शिष्य का फिर सेवा का ही है। तो इसलिए हम सब जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा कृष्ण प्रेम स्थापित करना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें देखना है कि उसका बेसिस क्या है। क्योंकि भारत में आप देखो बहुत से धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु को अपनाया है अपने जीवन में। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की बात नहीं कर रहे, संप्रदायों के बाहर भी कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को अपनाया है और वो उनकी फोटो भी रखते हैं, उनसे गुरु मंत्र भी लिए हैं। परंतु यदि पूछा जाए कि आपका गुरु के साथ जो रिश्ता है उसका बेसिस क्या है, तो कोई उत्तर नहीं। और हमें शुरू दिन से हमें क्या बताया जाता है कि हम जो शिष्य हैं हमारा संबंध गुरुदेव से सेवा के आधार पर है, आधारशिला है सेवा भाव। और सेवा भाव का अर्थ क्या है कि ये नहीं कि मुझे जो सेवा अच्छी लगे उस सेवा के आधार पर मैं गुरु जी से संबंध स्थापित करूं। जैसे यहां पर उद्धव जी को भगवान ने कहा बद्रिका आश्रम जाओ, अब जैसे कि ब्रह्मा जी, उनको भी भगवान ने तप करने के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न नहीं पूछा कि कहां करूं, कैसे करूं, कितने समय के लिए करूं, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव है, कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं। तो यहां पर उद्धव जी भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि सेवा भाव किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के जीवन में यदि हम देखें तो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि जब भी, एक तो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का प्रचार करना, एक ये प्रमुख आदेश श्रील प्रभुपाद को शुरू दिन दे दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। एक और प्रमुख आदेश श्रील प्रभुपाद को क्या दिया था, जब कभी आपको लक्ष्मी प्राप्त हो तो पुस्तकें छापो, अर्थात अनुवाद करो, ये नहीं कि बस प्रिंटिंग प्रेस में जाके कहीं से भी कुछ भी छापो। इसका अर्थ यह था कि श्रील प्रभुपाद को अनुवाद करना था ये सब पुस्तकों का, तो रात रात भर श्रील प्रभुपाद अनुवाद किया करते थे श्रीमद् भागवत। तो श्रील प्रभुपाद का संबंध श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज के साथ किस पर आधारित था, सेवा भाव। अब श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे नहीं शारीरिक रूप से, इस धरती पर नहीं थे, परंतु श्रील प्रभुपाद ने वो जो दो आदेश अपने गुरु महाराज से प्राप्त किए उसे सेवा में कैसे परिणित किया, ये उनका एक ज्वलंत उदाहरण है। जैसे कि पुस्तकों का अनुवाद कर छापना। अब देखिए श्रील प्रभुपाद पूरे इस्कॉन का मैनेजमेंट कर रहे थे और कितने सारे केंद्र थे, कितने सारे शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद ने उन कुछ 12-13 वर्षों में इस्कॉन स्थापित करने के पश्चात और श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ने तक, उन 12-13 वर्षों में श्रील प्रभुपाद 14 से ज्यादा बार पूरे विश्व का भ्रमण किए। उसमें शिष्यों की समस्याओं को देखना, जितने सारे केंद्र हैं उसका मैनेजमेंट, यहां तक कि फंड रेजिंग, और उसके साथ साथ ग्रंथों को अनुवादित कर देना। तो यदि आप ये वीडियो देखोगे, वो फाइनल जर्नी, क्या है वो, द फाइनल लेसन, उसमें आप देखोगे श्रील प्रभुपाद वो अपनी मृत शैया पर भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिक्टाफोन, वो डिक्टाफोन पकड़ भी नहीं पा रहे, और श्रील प्रभुपाद के शिष्य डिक्टाफोन श्रील प्रभुपाद के मुख के एकदम निकट रखे हैं और प्रभुपाद दशम स्कंद ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत थी, इतने सारे शिष्य थे और श्रील प्रभुपाद के इतने सारे शिष्यों में से कितने ऐसे शिष्य थे जो बहुत विद्वान हो चुके थे अब तक, प्रद्युम्न प्रभु इत्यादि, हृदयानंद महाराज, ये सब बहुत वो खुद कर सकते थे, आगे चल के उन्होंने ही किया दशम स्कंद के पश्चात, परंतु श्रील प्रभुपाद को जो आदेश मिला था, श्रील प्रभुपाद की जो सेवा थी अपने गुरु महाराज के प्रति, चाहे वो 20 साल पहले की बात हो या मृत शैया पर, श्रील प्रभुपाद ने अपना संबंध अपने गुरु महाराज के साथ उस सेवा के द्वारा बरकरार रखा, कायम रखा। अब हम जब इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं और हमें कुछ ऐसे आदेश नहीं मिलते अपने गुरु महाराज से जैसे श्रील प्रभुपाद को मिले। हालांकि हम तो तुलना भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं तुलना कर सकता श्रील प्रभुपाद से। जैसे एक बार एक भक्त, उनकी एक शिकायत थी कि मेरी दीक्षा हो गई है लेकिन गुरु महाराज से मेरा कोई संबंध ही नहीं स्थापित हो रहा, कोई संग ही नहीं मिल रहा है, पर्सनल एसोसिएशन नहीं मिल रहा है गुरु महाराज से। तो उत्तर में इनको कहा गया कि ये उनकी कृपा है, ये उनकी कृपा है कि आप ज्यादा उनका व्यक्तिगत पर्सनल संग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आदेश उन्होंने दीक्षा के समय आपको दिए वो कितना पालन हो रहे हैं। सोचो पर्सनल एसोसिएशन में और कितने आदेश वो दे देंगे, तो उसका ही बैकलॉग रह जाएगा आपके पास। तो पहले जो दीक्षा के दिन आदेश मिले हैं गुरु महाराज से वो कितना पालन हो रहे हैं हमारे जीवन में। तो फिर पर्सनल एसोसिएशन में यदि आ जाएं तो पर्सनल एसोसिएशन में गुरुदेव करेंगे क्या? देंगे ना, आदेश ही देंगे। ये थोड़ी कि पर्सनल एसोसिएशन में गुरुदेव के साथ हम कैसे, आपकी तबीयत कैसी है और आज क्या खाया, ये सब तो वार्तालाप गुरु से नहीं होता ना। तो एक प्रकार से हमारी स्थिति ऐसी है कि जो प्रिलिमिनरी आदेश है 16 माला ध्यान पूर्वक, 4 नियम का पालन, भक्तों के साथ संग और श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में सहयोग, ये जो हमने यज्ञ में अर्च विग्रह के सामने जो गुरु से आदेश प्राप्त किए और स्वीकृति दी हमने कि हां मैं इन सब का पालन करूंगा, तब फिर हमारी आधारशिला अब उसी से प्रारंभ करनी चाहिए। हालांकि हम इसकी भी अपेक्षा में होने चाहिए कि जब भी व्यक्तिगत संग मिले उनसे तो उस व्यक्तिगत संग में भी हम आदेश लेने का प्रयास करें। और अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्तिगत संग से ज्यादा जब हम उनकी वाणी सुनते हैं तो उसमें उनके आदेश छिपे हुए हैं, या ये भी नहीं कहेंगे कि छिपे हुए हैं, खुले हैं, एकदम खुले तरीके से गुरु महाराज जो हैं अपनी वाणी से, अपने प्रवचनों में वो क्या चाहते हैं, कौन सी सेवा चाहते हैं अपने शिष्यों से, वो बखूबी कह दिए हैं। हाँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी यदि हमें कोई आदेश मिले और उसका हम पालन ठीक से कर पाए तो वो भी गुरु जी को बहुत प्रसन्नता देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर उनके अंतिम दिवस कुछ भारतीय शिष्य श्रील प्रभुपाद के, वो श्रील प्रभुपाद को कहने लगे कि कुछ आपके जो ये अमरीकी शिष्य हैं जो अब भक्ति छोड़ चुके हैं, श्रील प्रभुपाद के सामने बहुत से भक्ति छोड़ चुके थे, तो इनके विषय में क्या राय है आपकी। श्रील प्रभुपाद हर समय उन अमरीकी शिष्यों को धन्यवाद दिया करते थे और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये ही मेरी मदद के लिए आए थे। मेरे गुरु महाराज के साथ मेरा संबंध प्रस्थापित करने के लिए मुझे जिन लोगों की जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये लोग सामने आए थे, और ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा मेरी सेवा करने के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद वो गोड़िया मठ के कुछ सन्यासियों के साथ बैठे हुए थे, और उस समय शिला प्रभुपाद के ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि आप विदेशी महिलाओं को कैसे ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो। सबसे पहले आप विदेशी महिलाओं को कैसे दीक्षा दे रहे हो, और वो भी उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हो। तो हुआ क्या कि एक उनमें से उन्होंने श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या थी मालती माता जी, तो उस समय श्रील प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाया करती थी। तो उन्होंने कुछ इन एक भक्त को जो प्रसाद बनाया हुआ था वो जब परोसा तो उन्होंने लिया नहीं, ये कहते हुए कि म्लेच्छों के हाथ का है, म्लेच्छों के हाथ का हम नहीं खाएंगे। अब फिर कुछ समय पश्चात हुआ क्या कि उनको अपना एक मंदिर स्थापित करने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता थी, तो प्रभुपाद के पास आए। तो प्रभुपाद को वो जो पिछली घटना थी वो सुनाई गई थी, तो प्रभुपाद ने इनसे कहा, जब ये डोनेशन मांगने आए तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं 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 नहीं, आप म्लेच्छों का पैसा कैसे ले सकते हैं, वो पैसा म्लेच्छों का है, वहां से आया है ना। और फिर उस मीटिंग में बहुत से जो सन्यासी बैठे हुए थे, तो श्रील प्रभुपाद ने मालती माता जी को कहा कि आप सर्विंग करो। और वो सर्विंग कर रहे थे तो पूरा टेंस माहौल था कि अब एक अमरीकी श्रील प्रभुपाद की शिष्या सर्विंग कर रही है। और जब वो सर्विंग कर रही थी तो वो खुद इतना शर्मा रही थी, तो श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कहा, यू नो दिस डिसाइपल ऑफ माइन, इफ आई टेल हर शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी, यदि मैं कहूं तो ये मेरी जो शिष्या है अपना गला काट सकती है मेरे लिए, एंड आई कैन डू द सेम फॉर हर। तो ये श्रील प्रभुपाद का दृष्टिकोण था इन शिष्यों के प्रति जिन्होंने उस समय ऐसी शरणागति दिखाई। जैसे एक और घटना है, श्रील प्रभुपाद अमृतसर से दिल्ली आ रहे थे ट्रेन में, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में श्रील प्रभुपाद का बुकिंग हुआ था, और बाकी शिष्य गुरुदास प्रभु, यही जो इनका ग्रुप था, जानकी माता जी, गुरुदास प्रभु, जमुना माता जी, तो ये दूसरे बोगी में थे। तो अब श्रील प्रभुपाद अकेले वो एसी बोगी में, तो जमुना माता जी और कौशल्या माता जी ये दोनों श्रील प्रभुपाद से मिलने आते हैं, श्रील प्रभुपाद एसी बोगी में, और श्रील प्रभुपाद वहां पर वो तकिए के सहारे थोड़े लेटे हुए थे। तो जमुना माता जी वो श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद आपके लिए कुछ लाओ, हम कुछ लाए हम आपके लिए। तो प्रभुपाद ने कहा, मुझे गरम चावल खाने की इच्छा है। तो अब ये लोग अमेरिका से पहली दफा इंडिया में, वो भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और यहां पे प्रभुपाद ने आदेश दिया, आई वॉन्ट हॉट राइस। तो जमुना माता जी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप मतलब यहां पे मैंने देखा कुछ ये लोग बेचते हैं ट्रेन में, तो वो लेके आए। प्रभुपाद ने कहा, नो यू शुड कुक, बस इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। कि कैसे चलती ट्रेन, वो भी इंडिया में, मुझे तो क्या भाषा भी नहीं आती। और बस इतना सुन लिया कि प्रभुपाद ने आदेश दिया है, आई वॉन्ट हॉट राइस कुक्ड बाय यू जमुना देवी। तो वो गए, वो पैंट्री पे गए, वहां पे देखा वो एक तो माहौल, पैंट्री जानते हैं क्या हाल होता है उसमें, गुजरना इतना मुश्किल है उस उधर से। तो ये लोग अब अमेरिका में रहे हुए, जहां सब कुछ इतना साफ सुथरा होता है, वहां पर देखा इतने बड़े बड़े बर्तन, और दो वहां पर कुक पूरे काले काले, कपड़े भी काले पहने हुए और पसीने में लथपथ। तो ये जाके अब उनको अंग्रेजी में बोलते हैं कि राइस राइस कि राइस, तो उनको समझ में नहीं आए कि क्या राइस राइस कर रहे हैं। तो फिर जो उनका उधर का पैंट्री का मैनेजर था, वो पैंट्री के मैनेजर को जाके बुलाया और उनको कहा कि आई वॉन्ट टू कुक हॉट राइस फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर। अब देखिए स्पिरिचुअल मास्टर, ये जिसको अंग्रेजी भी आती है उसको भी ज्यादा समझ में नहीं आता ये स्पिरिचुअल मास्टर क्या होता है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव, माई गुरुदेव इज सिटिंग इन दैट बोगी एंड आई वॉन्ट टू कुक हॉट राइस फॉर माई गुरुदेव। गुरुदेव स्पिरिचुअल मास्टर, वो बोला नो पॉसिबल, वो भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बोल दिया नो पॉसिबल। तब बहुत वहां पर उनका वार्तालाप हुआ। तो अब जमुना माता जी गई, वो जो टीसी था टीसी को पकड़ा कि ये थोड़ा सूट बूट पहना हुआ है, ये थोड़ा ठीक से समझ पाएगा और शायद ये इसके ऊपर का इंचार्ज लगता है। तो टीसी को पकड़ा जमुना माता जी ने और टीसी को कहा कि सी माई स्पिरिचुअल मास्टर इज ट्रेवलिंग इन दिस ट्रेन एंड ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ही हैज गिवन मी द ऑर्डर दैट आई शुड बी कुकिंग हॉट राइस फॉर हिम। सो यू प्लीज टेल दोज गाइज देयर that they should allow me to cook hot rice for a pure devotee of Krishna। तो ये सब वो सुन रहे हैं, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा ट्रेवलिंग हॉट राइस। तो वो टीसी ने कहा कि नो, दिस इज व्हाट वी कैन डू इज दैट व्हाट एवर राइस वी कुक यू कैन टेक दैट एंड यू कैन ऑफर इट टू योर प्योर डिवोटी। तो जमुना माता जी नो, आई विल कुक, नोबडी एल्स कैन कुक फॉर हिम, आई विल कुक। तो वो टीसी बोले कि दिस इज नॉट पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स वी कैन नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर द पैंट्री द किचन। तो जमुना माता जी कहती इफ यू आर नॉट अलाउिंग मी टू एंटर इन टू द पैंट्री आई एम जंपिंग ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से बाहर कूद रही हूं। और वो दरवाजे की ओर चले गए, चलते के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। ये टीसी अब ये एकदम आश्चर्यचकित, बहुत चक्कर रह गया कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाके उनसे बात करता हूँ। वो गए और जाके फिर उनसे कहा कि भाई इनको जो बनाना बनाने दो। और फिर जमुना माता जी को कह दिया आपको राइस के अलावा और जो कुछ बनाना बनाओ। तो वहां पर वो इतने बड़े बड़े बर्तन लेकर और जिस भी तरीके से उन्होंने, देखिए हमें यदि कोई बोले पैंट्री में जाके बनाओ कुछ तो हमें सब कुछ पक्का चाहिए, है ना, बर्तन ऐसा होना चाहिए, गैस ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर मान लीजिए कि ये जो कभी भारत में कभी कुकिंग किए नहीं है और वो भी भारतीय रेल में उसके पैंट्री के में, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो आदेश दिया उस आदेश को पूरा करने के लिए वो वहां पर गरम चावल श्रील प्रभुपाद के लिए बनाए और लेकर जब श्रील प्रभुपाद के पास गए तो श्रील प्रभुपाद ने देखा और प्रभुपाद ने कहा ओ हियर कम्स माय गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। उन दोनों को, कौशल्या माता जी और जमुना माता जी को प्रभुपाद कहे। और प्रभुपाद इतना प्रसन्न हुए, प्रभुपाद ने कहा आई न्यू यू कुड डू इट, मैं जानता था कि तुम ये कर पाओगे। तो अब यहां पर ये शिष्य हैं जिनको श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे अभी गरम चावल खाने हैं। इस आदेश से लेकर श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे आदेश दिया, जाके लंदन में जॉर्ज हैरिसन को प्रचार करो, इस्कॉन की प्रस्थापना करो लंदन में। तो इनके लिए ये दोनों आदेश एक बराबर ही थे। अभी हम जब गुरु से आदेश लेते हैं, गुरु जी हमको कहते हैं ग्लास पानी लाओ, और गुरु जी कहते हैं जाके इस्कॉन सेंटर खोलो, दोनों में अंतर है ना। लेकिन इनके लिए क्योंकि इतनी शरणागति थी उस समय, तो शरणागति के वजह से चाहे श्रील प्रभुपाद कहे चावल बनाओ या श्रील प्रभुपाद कहे कि जाके इस्कॉन सेंटर खोलो। और उसी यात्रा में श्रील प्रभुपाद जब दिल्ली स्टेशन, तो वहां पर एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, वो श्रील प्रभुपाद से मिलने आया और श्रील प्रभुपाद को उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ मदद करना चाहता हूं दिल्ली में, आपका यदि इस्कॉन यहां पर आपको इसकी स्थापना करनी है। तो प्रभुपाद ने गुरुदास इनसे कहा उतर जाओ। बोले मतलब जस्ट गो विद दिस पर्सन, ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू टू ओपन अ सेंटर हियर इन दिल्ली। तो उसके पास एक स्कूटर था, उस स्कूटर के पीछे गुरुदास प्रभु बैठे, पहली बार कुछ पता नहीं है स्कूटर क्या होता है, पहली बार इंडिया में स्कूटर देगा, स्कूटर के पीछे बैठे और श्रील प्रभुपाद ने आदेश दे दिया स्टार्ट समथिंग हियर, गुरु कृपा प्रभु। उनको हांगकांग भेजा। अब देखिए हांगकांग ऐसा देश है कि वहां पर जो साधारण रूप की जो सभ्यता है वो भी नहीं देखी जाती। तो वो गुरु कृपा प्रभु वहां पर हांगकांग में कितने महीने बीत गए, वहां पर वो अकेले गए हुए हैं और वो एक कुछ भाड़े पर उन्होंने एक जगह ली और वहां पर एडवर्टाइज कर करके लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे थे। और कुछ 6-8 महीने बाद प्रभुपाद को लिखते हैं, प्रभुपाद मैं यहां पर 8 महीने से हूं, एक व्यक्ति नहीं आया कार्यक्रम के लिए, एक व्यक्ति नहीं आया। मुझे ये लगता है कि मैं और कहीं पर यदि ट्राई करूं तो शायद सफल हो पाऊंगा, यहां कोई आसार नहीं नजर आते मुझे, कोई नहीं आया, एक व्यक्ति प्रोग्राम के लिए नहीं आया। तो प्रभुपाद ने उत्तर में क्या लिखा, प्रभुपाद ने लिखा यू जस्ट सिट एंड चैंट हरे कृष्णा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, डोंट कॉल एनीवन, डोंट स्पीक एनीथिंग, जस्ट सिट डाउन अलोन एंड चैंट हरे कृष्णा, दैट विल प्यूरिफाई द एंटायर हांगकांग। श्रील प्रभुपाद की और उन्होंने वही किया, प्रभुपाद ने कह दिया तो बैठ के वो बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद का उस समय उन्होंने आदेश पालन किया था, तो आज हांगकांग में हमारा इस्कॉन का सेंटर है, इतने सारे भक्त हैं और वहां बहुत अच्छा प्रीचिंग चल रहा है। आप जानते नहीं हांगकांग किस प्रकार का देश है, वहां पर एक व्यक्ति भी भक्ति यदि कर पाएगा तो वो मानो कि भारत में लाखों लोग भक्ति करने उसके बराबर है वहां पर। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के जिसमें उन्होंने श्रील प्रभुपाद के साथ अपना संबंध का आधार बनाया सेवा। श्रील प्रभुपाद का एक आदेश, बस पत्थर की लकीर। जैसे तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद एक कठिन सेवा दे रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज कहे, मजाक में बोल दिए, एक अमेरिका में एक फ्रेज है कि यदि आप मुझे इतनी कठिन सेवा देते हो तो इससे अच्छा तो मैं चाइना चला जाऊं, आई माइट एज वेल गो टू चाइना। तो प्रभुपाद ने कहा, यस दैट्स अ गुड आइडिया, यू शुड गो टू चाइना। तो बोले प्रभुपाद, दैट्स अ फ्रेज, आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेजेस, कृष्णा हैज स्पोकन थ्रू योर माउथ, यू हैव टू गो टू चाइना एंड यू हैव टू प्रीच टू द चाइनीज एंड मेक देम हरे कृष्णा डिवोटीज। बस तो तमाल कृष्ण महाराज चाइना गए, और उस समय उनका राधा दामोदर बस पार्टी बहुत सक्सेसफुल चल रहा था, तमाल कृष्ण महाराज उनके हेड थे। और सोचिए, तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ सन्यासी डिसाइपल्स में से, उनको श्रील प्रभुपाद ने भेज दिया चाइना। और आज यदि आप चाइना के विषय में सुनोगे तो वहां पर कितने ऐसे भक्त, वो यात्रा पे आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में मात्रा में वो लोग यात्रा पे आते हैं, मायापुर वृंदावन, और वो कृष्ण भी ठीक से नहीं बोल पाते। तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि उनका चाइना में जहां पर एक सेंटर था उसके नीचे एक रेस्टोरेंट था, और वो एक बार रेस्टोरेंट के सामने बहुत बड़ा एक जुलूस लोगों का, चाइनीज लोगों का जुलूस, और वो चिल्ला रहे हैं कुछ, तो जैसे धरना कुछ लिया है। तो जब उन्होंने पूछा कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं, तो पता लगा कि वो रेस्टोरेंट में उन्होंने एक कुछ बहुत ही भीभत्स खाने का पदार्थ बंद कर दिया था सर्व करना, ह्यूमन फिटस। तो उसके ऊपर इतना बड़ा प्रतिरोध चल रहा था कि कैसे बंद कर सकते हैं आप। तो सोचिए, ये इस्कॉन सेंटर के नीचे इस प्रकार का रेस्टोरेंट, और ऐसे कस्टमर और ऐसे लोगों को आपको चार नियम बताने हैं, कांदा लहसुन नहीं खाना, सोचो गोली से उड़ा देंगे वो तो। तो ये एक नमूना, ऐसे ऐसे देशों में श्रील प्रभुपाद के शिष्य जा जाके जो प्रचार किया, पाकिस्तान में। तो जैसे यहां पर उद्धव जी, हालांकि भगवान के वियोग में, लेकिन भगवान का आदेश, वो उस वियोग में भी, उस भाव विभोर अवस्था में भी पालन कर रहे हैं। सचिनंदन महाराज, उन्होंने एक सुंदर पुस्तक लिखी, नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, और इस पुस्तक में सचिनंदन महाराज लिखते हैं कि यदि हमें हमारा जप सुधारना है, क्योंकि 99% हमारा एडवांसमेंट किससे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो लिखते हैं कि यदि हमें हमारा जप सुधारना है तो हमारे हरे कृष्ण जप को सुधारने के लिए हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि उस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही यही है कि हम सेवा मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि सेवा भाव किस प्रकार का होना चाहिए, सेवा भाव में आज्ञाकारी होना चाहिए, ओबीडियंट, सेवा भाव में आज्ञाकारी होना चाहिए, और सेवा भाव में व्यक्ति को शरणागत, पूर्ण शरणागत होना चाहिए। और फिर बहुत सुंदर सचिनंदन महाराज लिखते हैं कि पांच प्रश्न हरेक सेवक को, साधक को पूछना चाहिए अपने आप से। यदि ये पांच प्रश्नों का उत्तर साधक को मिल गया तो अर्थात वो सेवा भाव में शुद्ध तरीके से स्थित हो जाएगा और उसका जो जप है हरे कृष्ण महामंत्र का वो तेज रफ्तार से बढ़ेगा शुद्ध तरीके से। तो बहुत ही सुंदर, मैं जब पढ़ रहा था तो मैं उसे लिख कर लाया कि 5 प्रश्न हमारे सेवा भाव को सुधारने के लिए। सुधारना है सेवा भाव, तो ये 5 प्रश्न हमें पूछने चाहिए अपने आप से। सबसे पहला प्रश्न, डू आई वॉन्ट टू सर्व और डू आई वॉन्ट टू बी सर्व्ड। क्या मैं सेवा करना चाहता हूं या मैं अपने ऊपर सेवा कराना चाहता हूं, ये सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, डू आई केयर फॉर अदर डिवोटीज और डू आई डिजायर दैट आई शुड बी ऑलवेज केयर्ड बाय अदर डिवोटीज। समझ में आया कि दूसरे भक्तों की देखरेख की चिंता मैं करता हूं या स्वयं की देखरेख होती रहे दूसरे भक्तों द्वारा, क्या हर समय उस भाव में मैं रहता हूं, ये दूसरा प्रश्न। डू आई रिस्पेक्ट अदर डिवोटीज और डू आई एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर डिवोटीज, जैसे अमान इन अमान देना वो सिद्धांत। चौथा प्रश्न, डू आई फील हैप्पी अपॉन सीइंग अदर डिवोटीज एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और डू आई फील एनवियस व्हेन आई सी देम एडवांस। क्या मैं प्रसन्न होता हूं सही तरीके से, केवल दिखावटी रूप से नहीं, जब दूसरे वैष्णव प्रगति कर रहे हैं उनकी साधना भक्ति में, तो क्या मैं उसमें प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, प्रसन्नता हो रही, केवल व्यक्त नहीं कर रहा, हो रही मुझे प्रसन्नता, या मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव आ रहा है। और अंतिम प्रश्न, डू आई कंप्लीटली डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ माय फेलो गॉड ब्रदर्स वैष्णवस एंड गॉड सिस्टर्स और डू आई डिपेंड ऑन माय ओन स्किल्स एंड माय माइंड। क्या मैं दूसरे वैष्णव के ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर हूं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की रचना करते समय वो लिखते हैं कि इस ग्रंथ की मैं रचना कर पा रहा हूं क्योंकि रूप रघुनाथ ये जो षड गोस्वामी हैं, इनके इनके लाठी के सहारे मैं एक कदम ले पा रहा हूं इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को प्रस्तुत करने के लिए। So do I depend completely wholesale on the mercy of Vaishnavas or do I depend on my own skills and my own mind? तो ये वो कहते हैं कि यदि इन 5 प्रश्नों का उत्तर, सही उत्तर हम एक तो खोज लें और उसके पश्चात अपने जीवन में उतारें, साधना भक्ति में यदि उतारें, तो निश्चित रूप से हम सेवा भाव में शुद्ध तरीके से स्थित हो पाएंगे और फिर उस शुद्ध सेवा भाव में हमारा जो जप है वो शुद्ध तरीके से हो पाएगा। तो यहां पर हम ये एक एक उदाहरण ऐसे हैं, जैसे उद्धव जी का एक उदाहरण, ये कुछ श्लोकों में केवल एक उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण कितना गहरा है, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो तात्पर्य है वो कितना गहरा। श्रील प्रभुपाद ने छोटा सा तात्पर्य लिखा है, उस छोटे से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक भक्त की परिभाषा है उसकी सेवा गुरु के प्रति और भगवान के प्रति। इसलिए सचिदानंद महाराज वो कहते हैं कि सेवा भाव की प्रयोगशाला कहां पर है, वेयर इज द लेबोरेटरी फॉर आवर सर्विस एटीट्यूड, वैष्णव एसोसिएशन। वैष्णव के संग में ही वो सेवा भाव, जो जो कुछ ये सारे प्रश्न हैं, उसका उत्तर मिल सकता है जब वैष्णव के संग में हम रहेंगे। क्योंकि बाहर तो केवल काम होता है, वो सेवा नहीं। जब हम वैष्णव के साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं सेवा। जैसे कि भक्त वो सब्जी काट रहे हैं, अभी किसी होटल में भी सब्जी काटी जाती है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? सेवा। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी जब ग्वाल सखाओं को, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल सखाओं को चुरा लेते हैं, गायों को, बछड़ों को चुरा लेते हैं, और उसके पश्चात फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जब वो देखते हैं कि ठीक उतने ही मात्रा में उसी प्रकार के गोप और गऊ और बछड़े भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न कर दिए, तो अब ब्रह्मा जी वो जब अपनी गलती का एहसास करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को वृंदावन का दर्शन कराते हैं। अब बहुत विशेष है कि ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन फिर से कर रहे हैं। उसी वृंदावन का दर्शन ब्रह्मा जी ने जब ये जैसे इस चित्र में हम देखते हैं कि भगवान नाश्ता ले रहे हैं अपने ग्वाल सखाओं के मध्य में बैठकर, तो वहां पर भी ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन किया और अपनी गलती का एहसास होने के पश्चात वृंदावन का दर्शन भगवान ने कराया। दोनों में अंतर क्या था? बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहले ब्रह्मा जी ने केवल वृंदावन का फॉर्म देखा था। ब्रह्मा जी सिंपली सॉ द फॉर्म ऑफ वृंदावन, बट आफ्टर ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, देन ब्रह्मा जी सॉ द एसेंस ऑफ वृंदावन। एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ वृंदावन? रिलेशनशिप्स बिटवीन द ब्रजवासीज। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दैट इज रियल वृंदावन। यू मे गो सी गोवर्धन, यू मे गो सी राधा कुंड, श्याम कुंड, यू मे गो सी सो मेनी स्पॉट्स इन वृंदावन, बट वॉट इज द रियल विजन ऑफ वृंदावन? वॉट ब्रह्मा जी देन सॉ, द रिलेशनशिप अमंगस्ट द ब्रजवासीज विथ कृष्णा, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए एक साधक को सख्य रस में आना चाहिए। वो कहते हैं कि दो सबसे मुश्किल है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, सख्य रस में आ जाना और आत्मनिवेदन, पूर्ण शरणागति। परंतु सख्य रस में आने से पहले भगवान के साथ सख्य रस में आने के लिए बोल रहे हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे नारद मुनि एक बार हस्तिनापुर गए, और नारद मुनि हस्तिनापुर गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा क्या, ये युद्ध से पहले की बात है, महाभारत युद्ध से पहले की बात है। नारद मुनि जाते हैं हस्तिनापुर और वहां देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ लेटे हुए हैं शैया पर, और डिस्कशन क्या चल रहा है? वॉर स्ट्रेटजीज। लेकिन वो डिस्कशन किस रूप में चल रहा है? सब लेटे हुए हैं, अर्जुन के जो चरण हैं वो भगवान के लैप गोद में, ये पोजीशन था, अर्जुन के चरण भगवान के गोद में, भगवान के चरण युधिष्ठिर महाराज की गोद में, युधिष्ठिर महाराज के चरण भीम इनके गोद में, और इस प्रकार से ये पांडव और भगवान श्री कृष्ण बैठकर उनकी चर्चा चल रही है युद्ध की, जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। तो वहां पर ये उदाहरण देते हुए कि अर्जुन और पांडवों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से आत्मनिवेदन का था, परंतु सख्य रस पर आधारित। और उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद करते हैं फ्रेंडली या फ्रेटर्नल रिलेशनशिप, कि उसमें उनकी सेवा भाव, उनकी जो भावना है सेवा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो कभी कम नहीं होती। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि उसी प्रकार से वैष्णव के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, परंतु सेवा भाव उसमें कमतरता नहीं आनी चाहिए। और प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं, सो फॉर वी डिवोटीज ऑफ इस्कॉन वी हैव टू एस्टैब्लिश अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इन सख्य रस। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इन ऑर्डर टू डू दैट वी हैव टू बिकम द वेल विशर ऑफ कृष्णा, जस्ट लाइक अ फ्रेंड बिकम्स अ वेल विशर ऑफ द अदर फ्रेंड। हमें भगवान का वेल विशर बनना है, भगवान का हित चिंतक। प्रभुपाद उसका अनुवाद करते हैं, हाउ कैन वन बिकम अ वेल विशर ऑफ कृष्णा बाय प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस एज ऑफ कलियुगा। So anyone who preaches Krishna consciousness becomes a well-wisher of Krishna. और प्रचार कोई अकेला नहीं कर सकता, प्रचार वो कर पाएगा वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के संग में और उनकी शक्ति से। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, मैं इतने सारे फल लेकर आया हूं कृष्ण प्रेम के, मैं अकेला नहीं बांट सकता। जब चैतन्य महाप्रभु कह दिए कि मैं अकेला प्रचार नहीं कर सकता, मुझे मेरे ये जो सारे पार्षद हैं, अनुयायी हैं, आगे चलकर भी जो होंगे, उनकी सहायता की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, टू एस्टैब्लिश दैट सख्य रस विद कृष्णा वी हैव टू बिकम द वेल विशर ऑफ कृष्णा एंड दैट इज बाय प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जब हम भक्तिमय सेवा, यहां पर उद्धव जी जो भक्तिमय सेवा भाव में है, ये बहुत ध्यान आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति का अनुवाद क्या किया है, डिवोशनल सर्विस, केवल डिवोशन नहीं किया। तो कपिल मुनि तीसरे स्कंद में वो कहते हैं कि भक्ति तीन प्रकार की होती है, और श्रील प्रभुपाद वो जो श्लोक हैं कपिल मुनि जो तीन प्रकार की भक्ति बताए हैं, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति इज ऑफ 81 काइंड्स। कपिल मुनि कहते हैं भक्ति इज ऑफ 3 काइंड्स, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति इज ऑफ 81 काइंड्स। और उसमें लिखते हैं जीव गोस्वामी सेज भक्ति इज ऑफ 252 काइंड्स। तो चिंता मत कीजिए, आज केवल तीन ही की चर्चा करेंगे। तो कपिल मुनि वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक साधक भक्ति तीन गुणों के अधीन कर सकता है, डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ पैशन, डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ गुडनेस। अब ये प्रश्न उठे, भक्ति तमोगुण में, भक्ति रजोगुण में, सप्तगुण में तो ठीक है, लेकिन तमोगुण में रजोगुण में भक्ति? तो कपिल मुनि बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। अब इसमें हमें परखना है कि हम जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हैं कौन सी श्रेणी में। हमको कई बार हम उस भ्रम में रहते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं ना, तो शुद्ध भक्ति में लगा हूं तो थोड़ा बहुत शुद्ध भक्त हो रहा हूं। तो यहां पर कपिल मुनि वो कहते हैं कि सर्वप्रथम भक्ति तमोगुण में, उसकी परिभाषा देखते हैं कि तमोगुण में भक्ति किस प्रकार की होती है। वो कहते हैं, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यम एव वा संभ्रमी भिन्न दृग भावम मई कुर्यात सतामस, मई कुर्यात सतामस, कि ये मेरे प्रति भक्ति है तामस, तमोगुण में। कौन सी? हिंसा, दंभ, मात्सर्य, संभ्रमी भिन्न दृग, कि जो साधक अपनी साधना में हिंसा, वायलेंस, दंभ, अहंकार, मात्सर्य, द्वेष, ईर्ष्या, संभ्रमी, क्रोध और भिन्न दृग, भिन्न दृग कपिल मुनि कहते हैं सेपरेटिस्ट विजन, कि उसका भिन्न हर समय मत होता है, कि सारे वैष्णव का मत एक तरफ, मेरा मत एक तरफ। तो यदि इन लक्षणों में कोई भक्ति कर रहा है, क्रोध में, ईर्ष्या में, अहंकार में और सेपरेटिस्ट विजन के साथ, तो कपिल मुनि कहते हैं That devotional service in the mode of ignorance. और उदाहरण है दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त प्रजापति ये पद उनको मिला, लेकिन शिवजी जो उनके दामाद, और शिवजी केवल कोई उनके दामाद ही नहीं थे, यही केवल शिवजी की परिभाषा या पहचान नहीं थी, गुण अवतार महादेव। परंतु दक्ष यज्ञ में हम सुनते हैं कि दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से, भगवान शिवजी ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, लेकिन जो ईर्ष्या और क्रोध और यहां तक ये सब कुछ, हिंसा, दंभ, मात्सर्य, सब कुछ दक्ष यज्ञ में देखा गया। तो दक्ष प्रजापति का उदाहरण दिया गया है भक्ति या साधना तमोगुण में जब कोई करता है। तो हमारी साधना भक्ति में, वैष्णव के संग में, यदि इनमें से एक भी गुण आ जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि तमोगुण में वो भक्ति हो रही है। और तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद विशेष रूप से लिखते हैं भिन्न दृग। भिन्न दृग का अर्थ है सेपरेटिस्ट विजन। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक उदाहरण दिया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस टू हैव द विजन ऑफ कृष्णा। और भिन्न दृग का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और गुरु परंपरा से सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये मेरा दृष्टिकोण है, भक्ति करने का मेरा तरीका है ये। जैसे जनानिवास प्रभु, वो एक डीटी वर्शिप सेमिनार में बोल रहे थे कि मंदिर के अर्च विग्रह और घर के अर्च विग्रह की सेवा में अंतर क्या है। उन्होंने कहा कि घर के अर्च विग्रह की जो सेवा होती है वो अपने अनुसार होती है, जब मुझे अच्छा लगा अच्छा लो भोग चढ़ाओ, टाइम और जो अच्छा लगा, आज चाइनीज खाने की इच्छा है चलो आज भगवान को चाइनीज खिलाते। इसे कहते भिन्न दृग। लेकिन मंदिर में सब कुछ फिक्स्ड रहता है, होना चाहिए, सब कुछ फिक्स्ड होना चाहिए। जैसे हम इटली में थे तो इटली में वहां पर बहुत वर्ष पहले मंदिर में वो भगवान को सब जो भोग आरती में आइटम्स हैं वो और ऑफर करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखते हैं वो सब एकदम ट्रेडिशनल आइटम्स। तो वहां पर ये देखा गया कि भगवान को ऑफरिंग में तो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं लेकिन भक्तों के प्लेट में पिज्जा, पास्ता, लज़ानिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान को हम ट्रेडिशनल आइटम्स ऑफर करते हैं, लेकिन हम लोग इटली के हैं ना तो इटालियन फूड खाते हैं। तो जनानिवास प्रभु बोल रहे थे इसे कहते हैं भिन्न दृक, एक सेपरेटिस्ट विजन कि ट्रेडिशन से थोड़ा हटके। जैसे कई बार यह देखा जाता है कि इफ यू आर ट्रेडिशनल, बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेडिशनल हो भक्ति में, तो डर रहता है कि ट्रेडिशन लीड्स टू स्टैग्नेशन, एंड इफ यू आर वेरी मच इनोवेटिव तो यह कहा गया कि इनोवेशन लीड्स टू डिविएशन। सो डेंजर इज इन बोथ, ट्रेडिशन मेनी टाइम्स लीड्स टू स्टैग्नेशन एंड इनोवेशन लीड्स टू डिविएशन। तो अब करें तो क्या करें, इसलिए गुरु साधु शास्त्र तो वो बताते हैं कि कौन सा इनोवेशन आपको इनोवेटिव तरीके से प्रस्थापित करना है और कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने 1966 में कहा ईट एज मच एज यू वॉन्ट, तो भक्त उस समय एक भक्त वो 35 चपाती खाते थे रोज। गुरु मुख पद्म वाक्य, 35 चपाती। और फिर उसके 5 साल बाद प्रभुपाद ने कहा ईट ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी एंड सोल टू कीप टुगेदर। तो बट प्रभुपाद 5 years ago you said eat as much as you want. Prabhupada ne kaha that time you didn't object. Why you're objecting now? That time Guru Mukha Padma Vakya. Abhi? This is also Guru Mukha Padma Vakya. To bhinna drik ka arth hai ki hamare indriyon ko jo achha lagta hai aur hame जिस प्रकार की भक्ति अच्छी लगती है उस प्रकार की भक्ति हम करें और फिर कर्मार्पणम, वो कर्म भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं। तो ये जो एक विजन होता है ये है कपिल मुनि के अनुसार भक्ति तमोगुण में। फिर वो कहते हैं रजोगुण की भक्ति, सुनना है आगे। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चदा वर्चयद यो माम पृथक भाव सराजसा। पृथक भाव सराजसा, इसमें भी पृथक भाव है, उसमें भिन्न दृक, इसमें पृथक भाव सराजसा। ये रजोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति के लक्षण है यश और ऐश्वर्य। जब इस उद्देश्य से भक्ति की जाए कि मुझे यश और ऐश्वर्य मिले इस भक्ति के द्वारा, मेरी साधना के द्वारा, कि कितने लोग मुझे प्रभु कहते हैं आजकल, कितने मुझे दंडवत देते हैं देखते ही, या कम से कम बोलते तो हैं दंडवत प्रभु फोन पे। तो कई बार हमारा बैरोमीटर एडवांसमेंट का ये रहता है कि 2 साल पहले कोई मुझे दंडवत नहीं बोलता था, अब मुझे दंडवत बोलना शुरू किए हैं, सो आई एम नाउ एन एडवांस डिवोटी। फिर उसके 2 साल बाद केवल बोलते नहीं, वो लोग देते भी हैं दंडवत। तो और मैं अब प्रगति कर रहा हूं भक्ति में। ये रजोगुणी भक्ति है, यश और ऐश्वर्य। और इसमें उदाहरण है ध्रुव महाराज का कि ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की, हेतु क्या था पहले कि मुझे राज्य मिले, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मिले, यश और ऐश्वर्य मिले। तो मन में बदले की भावना और वो यश और ऐश्वर्य प्राप्त करने की भावना, हालांकि अंततः चाहे कोई तमोगुण या रजोगुण या सत्वगुण किसी भी भाव से भगवान के संपर्क में आता है तो शुद्ध तो होता ही है। तो ध्रुव महाराज शुद्ध भक्ति को प्राप्त किए, परंतु उदाहरण शुरुआत में उनका यह दिया गया है। तो जब हम भक्ति में इस आशा से रहते हैं, इसलिए जो रजोगुणी साधक होता है वो उसके जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ मानता है, वो ही कंसिडर्स हिज वीकनेस एज ए स्ट्रेंथ। जैसे कि उसको भक्ति में कुछ गुण प्राप्त हो जाते हैं, ही एक्वायर स्किल्स इन भक्ति, तो गुणों के आधार पर वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मैं अब दीक्षित हो चुका हूं, मैं अब जो भी टेंपल प्रेसिडेंट हूं, मैं अब इसका मैनेजर हूं, ये मेरे को पद मिल गया है, मैं अब प्रचारक हूं, मैं अब ड्यूटी वर्शिप का इंचार्ज हूं, ये इंचार्ज हूं। तो जब ये सब पद और स्किल्स उसमें आ जाती हैं, सो ही कंसिडर्स दैट एज ए स्ट्रेंथ। लेकिन वो एक दृष्टिकोण से वीकनेस है, क्योंकि यदि उसके वजह से उसके अंदर दंभ, प्राइड, फॉल्स ईगो ये आ रहा है, तो वो कई बार ये कहा जाता है कि उसकी जो कंडीशनिंग्स है उसको ट्रांसेंडेंटल मानता हो, है ना, और दूसरे भी बोल देते हैं प्रभु जी क्या ट्रांसेंडेंटल है आप। सो ही कंसिडर्स हिज वीकनेस एज हिज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग्स एज ट्रांसेंडेंटल। सो दैट इज डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ पैशन। और फिर अंततः डिवोशनल सर्विस इन द मोड ऑफ गुडनेस। कपिल मुनि ने इसको भी गाली दी है, ये कोई इसको बहुत प्रोत्साहित करके इसका गुणगान नहीं किया है। डिवोशनल सर्विस सत्वगुण में वो कहते हैं, कर्म निर्मा निर्हरम उद्दिश्य परस्मिन वा तद अर्पणम यजेत यस्तव्यम इति वा पृथक भाव स सात्विका। पृथक भाव इसमें भी अभी तक, इसमें कपिल मुनि कहते हैं कि जब कोई साधना में लगता है साधक, किस उद्देश्य से, कर्म निर्हरम उद्देश्य, उसका उद्देश्य है कि पापों से मुक्ति मिले, तो जब इस उद्देश्य से भक्ति करता है कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, तो पाप से मुक्त होने का जो उद्देश्य है वो सत्वगुणी है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। उदाहरण है मृगरारी। मृगरारी भक्ति में लगा जब नारद मुनि ने मृगरारी को कहा कि कैसे तुम नरक की यातना भुगतोगे, तो नरक की यातना से बचने के लिए भक्ति में वो लगा। तो सत्वगुण की भक्ति शुरुआत में उसकी थी, परंतु वो एक डील हो गया, वो भी एक डील है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मेरी भक्ति करने की वजह से मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, उनके एक सन्यासी शिष्य, वो उनसे साल में एक दो बार मिलते, बहुत डोनेशन इकट्ठा करके लाते, और वो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के सामने वो डोनेशन प्रस्तुत करते। तो एक दिन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने इनसे कहा कि पता है हमारा दोनों का रिश्ता क्या है, मैं केवल जमींदार हूं तुम्हारे लिए। जैसे जमींदार के वो टैक्स पे करता है ना, गांव वाला जो भी नागरिक, तो तुम केवल साल में एक दो बार आके जो डोनेशन इकट्ठा किए वो लाके मेरे चरणों में रख देते हो। मतलब ये कोई गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं होना चाहिए। But this is a relationship between a zamindar and the citizen. तो देखिए ये सन्यासी जिन्होंने सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये भक्ति सिद्धांत के शिष्य, लेकिन वो कह रहे थे कि संबंध केवल इसी का नहीं होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए और आप मुझे इसके बदले में पद देते रहो। जैसे कि कर्ण का उदाहरण है महाभारत में, कि कर्ण, हालांकि कर्ण का गुणगान हुआ है कि कर्ण अर्जुन से ज्यादा दानशूर था, दानवीर कर्ण बोला गया है ना। तो बाहरी रूप से यदि देखा जाए कि जो दान ज्यादा करता है वो सत्व गुण में स्थित होता है, और अर्जुन के जीवन में देखा जाए तो अर्जुन ने कुछ ऐसा कुछ दान नहीं किया था कि दानवीर अर्जुन कहा गया है, लेकिन अर्जुन का गुणगान ज्यादा हुआ है क्योंकि अर्जुन ने अपनी कला के साथ अपने आप को अर्पण किया और कर्ण ने केवल अपनी कला के साथ अपने नाम और शोहरत को बढ़ाया। इसलिए भक्ति बाहरी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आ सकती। अर्जुन ऑफर्ड हिज स्किल्स एज वेल एज हिमसेल्फ, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें हमारी साधना भक्ति में यह परखते रहना चाहिए कि मेरी साधना भक्ति क्या मैं केवल दुखों के निवारण के लिए कर रहा हूं या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। अब ये तो सत्वगुण की भक्ति बता रहे हैं आप, तमोगुण रजोगुण की तो छोड़ दीजिए, वो तो लिस्ट में ही नहीं आते। तो अक्सर देखा जाता है कि वैष्णव के संग में हम सिद्धांत को भली भांति जानते हैं, परंतु उस सिद्धांत का जब पालन करना होता है तब लड़खड़ा के मार खा जाते हैं कई बार। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि हमारे पास जो औषधि दी गई है हमें, द मेडिसिन विच वी हैव इज सो पोटेंट, बट द डॉक्टर्स आर डिसऑर्गेनाइज्ड इन इस्कॉन। द मेडिसिन इज वेरी पोटेंट बट द फिजिशियंस आर डिसऑर्गेनाइज्ड, एंड इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बट मेडिसिन इज पॉइजन। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, इन ऑर्डर फॉर इस्कॉन टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू थिंग्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। एक और समय प्रभुपाद ने यह भी कहा, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल आई वॉन्ट दैट माई मेंबर्स ऑफ इस्कॉन शुड बी सिंसियर, एंड अलॉन्ग विथ सिंसियरिटी दे शुड बी इंटेलिजेंट। Sincerity with intelligence, श्रील प्रभुपाद ने कहा। जैसे हम जब लंदन में थे तो वहां पर स्वामीनारायण जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत प्रचलित है। तो एक भक्त एक वहां की उनके ऑर्गेनाइजेशन की घटना बता रहे थे कि एक उनके सन्यासी जिनको इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कहा था, बड़ा प्रोजेक्ट 300 करोड़ का, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते, तो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो ये कितने वर्ष इन्होंने अपना जी जान लगा दिया और 300 करोड़ इकट्ठा करना, फिर वो प्रोजेक्ट खड़ा करना। अब वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया और उसका ओपनिंग है दूसरे दिन, उसका ओपनिंग है और उसके एक दिन पहले उनके गुरु महाराज वो सन्यासी को कहते हैं कि मैं अब चाहता हूं कि आप, वो गुजरात में एक छोटा सा गांव है ना, वहां जाके कुछ प्रीचिंग करो। कल्पना कीजिए, हम अगर उस स्थिति में होते कि इतने वर्ष हमने लगा दिए, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा किया, उसके ओपनिंग में भी हमको अनुमति नहीं है। उसके ओपनिंग के एक दिन पहले गुरु महाराज कहते हैं, गुजरात के एक छोटे से गांव में जाके, जहां पर कोई उनको कभी देखने भी नहीं वाला है, कोई पूछने भी नहीं वाला है, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था कि उनके पास उतना ही स्किलफुल दूसरा सन्यासी था जो उतना 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता था, इसलिए इनको वहां भेजा गया। तो वो भक्त जो हमको ये घटना बता रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके अंदर कि इतने स्किलफुल सभी हैं, मैनेजर्स और सन्यासी ऑर्गेनाइजर्स, लेकिन उनके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं है देने के लिए, और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है, लेकिन जो हमारा मेडिसिन इतना पोटेंट है, लेकिन यदि हॉस्पिटल का हाल देखो तो टूटा हुआ बेड है और कोई डॉक्टर टाइम पे नहीं आता। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हमारी जो भक्ति है, वो भक्ति जो सेवा भाव जिस आधारशिला पर होनी चाहिए, उस सेवा भाव के साथ होना क्या चाहिए, सिंसियरिटी और उसके साथ इंटेलिजेंस। तो जैसे यहां पर महात्मा उद्धव वो कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने एक आदेश दिया बद्रिकाश्रम जाने का, और ये जितने भी महाजन हैं, हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण की उस भाव विभोर अवस्था में हर समय देखे जाते थे और उनकी शरणागति एकदम पक्की थी, परंतु उसके साथ साथ वो अपनी शरणागति शुद्ध भाव से और बुद्धि के साथ वो भगवान को अर्पित करते थे। तो जो कपिल मुनि ये तीन प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, तमोगुण में, रजोगुण में और सत्वगुण में, तो आज के श्लोक से हम ये सीखते हैं कि भक्ति प्रस्थापित होती है जब हम अपने गुरु से संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि उद्धव जी, उन्होंने भगवान से संबंध स्थापित किया भगवान को जगत गुरु मानते हुए, लेकिन हम गुरु शिष्य परंपरा में संबंध स्थापित करें और वो संबंध स्थापित होगा सेवा भाव, लेकिन वो सेवा भाव डिवोशनल सर्विस हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए, शुद्ध सत्व के स्तर पर। और शुद्ध सत्व की भक्ति कौन सी है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। वो उत्तम भक्ति में जब हम स्थित होंगे, तब जाकर हम, जैसे कि सचिनंदन महाराज ने वो पांच प्रश्न प्रस्थापित किए कि इनके उत्तर यदि हम ठीक से ढूंढ लेंगे, अपनाएंगे, तो वैष्णव के संग में सेवा भाव के साथ हम नित्य रूप से हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, इसका कीर्तन जप कर पाएंगे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
प्रभु जी, जो आपने कहा कि जो हमारे स्किल है वो हमारे असलियत में वीकनेस है, जो हमारे वीकनेस है हमें उसको स्ट्रेंथ में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?
गुरु, साधु और शास्त्र, हम जब जैसे कि भिन्न दृक, कपिल मुनि ने कहा कि जब पृथक भाव हमारा भक्ति में होता है कि मेरे अनुसार भगवान को मैं प्रसन्न ऐसे कर पाऊंगा। जैसे श्रील प्रभुपाद मद्रास में थे, वहां पर एक लाइफ मेंबर के घर में उन्होंने राधा कृष्ण को काले कपड़े पहना रखे थे। तो जब पूछा गया काले कपड़े क्यों पहना रखे हैं, तो उत्तर दिया कि उनके शरीर से बहुत तेज आता है, इसलिए वो हमारे आंखों को अंधा कर रहा है, इसलिए काले कपड़े पहनाए भगवान। इसे कहते हैं भिन्न दृक, अपनी तरीके से भगवान की भक्ति करना। तो जब हम अपनी तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, और अपनी तरीके से भगवान की भक्ति का अर्थ है कि उत्पातव्य कल्पते, कि जब हम कैसे वो श्लोक शुरू होता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधिम विना, बिना इन सब के, श्रुति स्मृति पुराण आदि इन सब के बिना जब हम अपने तरीके से भक्ति करना चाहते हैं और करते हैं, तब फिर जो हम स्ट्रेंथ मान रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, वो हमारा वीकनेस है। तो उसको स्ट्रेंथ में परिणित करने के लिए हमें भगवान और भगवान के जो प्रतिनिधि हैं उनका विजन अपना विजन बनाना है, न कि हमारा विजन वो भगवान को दें, नहीं तो भगवान का विजन उसको हमारा विजन बनाना है। भगवान के दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण बनाना, गुरु के दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण बनाना।
प्रभु जी, आपने जो कहा कि तीन प्रकार के अलग अलग भक्ति होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भक्त भक्ति करते हैं और सभी एक ही स्तर में नहीं रहते, अलग 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 रहते, तो फिर कैसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसमें प्रॉपर विदाउट घर्षण कोऑपरेशन हो सकता है, या बिना किसी घर्षण के भी वो हंसी या एक स्मूथली भक्ति कर सकते, ये तो असंभव है इस प्रकार से अगर देखा जाए तो। किसी को हम मना नहीं करते, यहाँ पे कोई भी सेवा कर रहा है, कोई योगदान दे रहा है, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारा कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, लविंग रिलेशनशिप हो, और अगर ये स्तर अगर एक साथ सबका स्तर नहीं, तो कैसे संभव है कि कोई लविंग और कोऑपरेशन के साथ और शुद्ध तरीके से सेवा करने का प्रयास करेगा, और फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लविंग रिलेशनशिप वैष्णव में एक हम बना पाए अभी इस स्तर पे।
सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि खामियां हम सब में है, कमियां हम सब में हैं, और हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए उनके जो भी गुण हैं, सब में कुछ ना कुछ गुण तो है ही, जैसे इसको भी तमो गुण बोला गया, गुण है उसमें कुछ, रजो गुण, सत्व गुण, तो चाहे कोई तमो गुण में या जो भी गुण में कर रहा है, हम भी जिस किसी भी गुण में हैं, तो उसके आधारशिला पर हमें वैष्णव के साथ संग करते हुए इस आंदोलन को बढ़ाना है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के कई ऐसे शिष्य आपस में उनकी नहीं बनती थी, प्रभुपाद को शरणागत थे वो, लेकिन बहुत बार आपस में उनकी नहीं बनती थी। जैसे न्यू वृंदावन ये फार्म कम्युनिटी जब शुरू हुई, तो ये इतनी बड़ी फार्म कम्युनिटी 5000 एकड़, और वहां पर उस फार्म कम्युनिटी पर कितने 800 से ज्यादा भक्त फुल टाइम गृहस्थ रहा करते थे, फुल टाइम गृहस्थ, मंगल आरती में 800 वहां पर मंगल आरती में आते थे। तो उसमें से कुछ सीनियर जो डिसाइपल थे प्रभुपाद के, उनको वहां के कम्युनिटी के तौर तरीके पसंद नहीं आए, उनके भक्ति करने के तरीके पसंद नहीं आए, तो न्यू वृंदावन के एकदम कुछ ही 3 घंटे में एक और फार्म कम्युनिटी खुली है, गीता नगरी। तो अब ये कि एक तो पहले से इतनी बड़ी फार्म कम्युनिटी, और फिर तीन घंटे के रास्ते पे ही इतने निकट एक और इतनी बड़ी फार्म कम्युनिटी खोलने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि उनका दोनों का जम नहीं रहा था भक्तों का। तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि प्रभुपाद हमें यहां पर एक गीता नगरी जब उन्होंने खोली तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा, प्रभुपाद यहां पे हमको एक बड़ा लैंड मिला। तो प्रभुपाद जान गए कि इनका न्यू वृंदावन के जो लीडर हैं उनके साथ नहीं बनती। तो प्रभुपाद ने फिर उनको प्रोत्साहित किया कि हां आप वहां पर फार्म कम्युनिटी चालू करो, और फिर पूरा गाइडेंस उनको दिया। तो प्रभुपाद ने देखा क्या कि ये नहीं कि उनको नहीं उनके साथ ही रहना तुमको जरूरी आवश्यक है और ऐसा कैसा किस प्रकार के वचनो हो, नहीं उनके अंदर कुछ एक गुण देखा कि हां इनको कहीं पर भगवान श्री कृष्ण के प्रचार कार्य करना है। तो उस गुण को देखते हुए उस स्पार्क को फैन किया प्रभुपाद ने। जैसे कि राधा दामोदर बस पार्टी उस समय इनके तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज इनके अलग अलग पार्टियों में स्पर्धा प्रभुपाद प्रोत्साहित करते थे। जैसे जब तमाल कृष्ण महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर लेके आते थे तो प्रभुपाद कहते थे इतना ही, अरे पता है वो पार्टी ने कितना किया, तो फिर उन्होंने इतना किया, अच्छा। तो प्रभुपाद देखते थे कि इनके अंदर ये कॉम्पिटिटिवनेस है, लेकिन प्रभुपाद ने कैसे उसको भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। तो हां यहां पर हमारा वो वैकुंठ भाव नहीं आ सकता, हालांकि हम रह रहे होंगे शारीरिक रूप से वैकुंठ में, लेकिन भाव वैकुंठ का नहीं होगा। तो इसलिए वैष्णवों के संग में हमें एक दूसरे के जो गुण हैं उनको पकड़कर वैष्णवों का संग करना है, न कि उनकी गलतियों को पकड़कर। और दोनों हैं, गुण भी हैं और गलतियां भी हैं, क्योंकि यदि हम किसी वैष्णव की गलती पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो भी तो अपने गलती पकड़ेगा। जैसे प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि एक स्कूल में एक मास्टर जी जो दो विद्यार्थी मस्ती कर रहे हैं उनको दंड कैसे दिया करते थे, दोनों को सामने बुलाते तो इसका कान खींच तो उसका कान खींच, तो ये जितना खींचता जोर से वो दूसरा भी उतना ही खींचता, तू मेरा जोर से खींचता मैं भी जोर से खींचू। तो मेंटालिटी क्या है कि जब कोई हमारी गलतियों या हम किसी की गलतियों को पकड़ते हैं या उस पे ही केंद्र रखते हैं तो फिर वो अगला व्यक्ति भी तू किस मुंह से बोलता है मुझे, तो वो भी हमारी गलतियों, तो फिर वो संग क्या हो रहा है, बस उसमें मत चित्त मत गत प्राण ये सब नहीं हो रहा है, बोध इंत परस्परम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल गलतियों की चर्चा हो रही है। जैसे वो उदाहरण है भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर का कि वो एक गौड़िया मठ में जो ब्रह्मचारी आश्रम था वहां से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक कमरे में कुछ उनके शिष्य ब्रह्मचारी सन्यासी शिष्य एक वैष्णव के विषय में बहुत उल्टा सीधा बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने सुना, तो वो कुछ समय सुनने के पश्चात उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश कर कहा लेकिन वो कपड़े बहुत अच्छा धोता है, बस इतना कहकर चले गए। और फिर सभी वो जो शिष्य उस एक वैष्णव की निंदा कर रहे थे वो सब साइलेंस था वहां पे दो मिनट कि हम लोग बैठकर निंदा कर रहे हैं लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो जानते हैं। हां उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके अंदर ये कमियां नहीं है, उन्होंने कहा लेकिन उसके अंदर एक गुण है कि कपड़े अच्छे धोता है, फोकस ऑन दैट। सो दैट इज अवर होप।
जी अभी जैसे हमने कहा कि गुणों को पकड़ना चाहिए उस व्यक्ति के, समझो अगर मेरी भक्ति रजोगुण में और अगर मैं यश और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा हूँ और अगर कोई मुझे उसके लिए प्रमोट कर रहा है तो यह ऐसा नहीं कि हम उसको गलत चीज के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, गलत पाथ जो है, जो शुद्ध सत्व की जो भक्ति है, उससे वो उसी के उस तौर में वो आगे बढ़ रहा है, और बाद में जाके उसका बड़ा उसमें धोखा भी हो सकता है, भक्ति में हानि भी हो सकती है।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको नम्र बनाने के लिए दुत्कारते रहे हर समय कि उसको शुद्ध सत्व की भक्ति में लाना है। यदि उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा तो वो रजोगुण में स्थित रहेगा हर समय, तो हर समय उसको मैं यही कहता रहा हूं कि नाली के कीड़े हो। देखिए, वो व्यक्तिगत रूप से वैष्णव सोचता है अपने बारे में, हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं कि हमें तो हाँ उसमें यदि एक भी गुण है भक्ति का या जो भी भौतिक भी गुण है तो हमें उस पर केंद्रित करना है। ये नहीं कि हम उसे, एक होता है कि बढ़ा चढ़ाकर जब कोई किसी का गुणगान करता है कि उसके अंदर वो गुण इतनी सी मात्रा में है लेकिन उसका गुणगान ऐसा हुआ है, मतलब उसको बोलते हैं एग्जैजरेशन, कि वो नहीं होना चाहिए। जब हम वचनों को प्रोत्साहित करते हैं तो ये नहीं कि आप तो भगवान के ग्वाल सखाओं में से एक हो जो आए हो आज, आप तो भगवान के मंजरियों में से एक हो, तो मेरा शत शत प्रणाम। नहीं, इस प्रकार से नहीं। हाँ, जो जितना आवश्यक है उस भक्त के गुणों को हम बखान करें उतना करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। दैट इज अवर ड्यूटी टू डू दैट, एंड इट इज दैट वैष्णव्स ड्यूटी टू रिमेन इन शुद्ध सत्व इन स्पाइट ऑफ हियरिंग ऑल दैट। तो ये हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है कि किसी को नम्र बनाए हम। Nobody has appointed us to make others humble. We should not become self-appointed deliverers of other Vaishnavas. और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, कई बार कुछ भक्त है वो बहुत जोरदार शुरुआत करते हैं अपने भक्ति की, और हमें दिखता भी है कि बहुत ऊंचे स्तर पर वो भक्ति चालू कर रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफी निचली स्तर पर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन विद अदर वैष्णवास। और ऐसा भी देखा है कि बाद में वो भक्ति से बाहर फेंके गए, तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा न होने के लिए क्या करना चाहिए?
इसको बोलते हैं वो दिवाली का रॉकेट ना, वो जब चालू होता है तो एकदम फुर्र करके कितना ऊपर जाता है, लगता है वो गया एकदम, अभी ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, फिर थोड़ी बार देखा वो सब बारूद खत्म हो गया तो वापस नीचे। तो कई बार हमारी भी स्थिति दिवाली के रॉकेट की जैसी होती है। इसका कारण यह है कि वो जो उत्साह उस वैष्णव का शुरुआत में, जो उस वैष्णव ने उत्साह दिखाया, उसकी आधारशिला बहुत कच्ची थी। द बेसिस ऑफ दैट एंथुजियाज्म वॉज वेरी वीक एंड शैलो। तो हमें रूप गोस्वामी जो प्रिंसिपल दिए हैं खाली एंथुजियाज्म नहीं कहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि बस उत्साह होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। सो दैट एंथुजियाज्म शुड बी बेस्ड ऑन पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। सो दीज एग्जाम्पल्स विच यू आर कोटिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंथुजियाज्म without patience and determination. So that's like that rocket, you know. तो इसलिए हमें हमारे उत्साह को प्रभुपाद मेरे ख्याल से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं एंथुजियाज्म विथ इंटेलिजेंस समथिंग एक्टिव एंडेवर विथ इंटेलिजेंस या वो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं कि व्हाट इज एंथुजियाज्म एंडेवर विथ इंटेलिजेंस. तो इसलिए वो जो रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी है ना बचपन में हमने जो सुनी कि वो जो खरगोश है वो भागता है इतना शुरू में इतना भागता है और उसके बाद में फिर कहां सो गया कि दिखाई नहीं देता है वो. तो वही उदाहरण है कि कोई आया 64 माला 32 माला यहां तक तिलक फिर सबसे बड़ी कंठी माला जप माला को इधर मान लेता है फिर जपा के समय सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी का रहता है और फिर 6 महीने बाद आपन यान्ना पायलट का लापता. तो देखिए रूप गोस्वामी इतने वर्षों पहले जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया उत्साह निश्चय और धैर्य ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए बराबर. ये नहीं कि खाली बस पेशेंस 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 कोई उत्साह नहीं ये भी नहीं होना चाहिए कि आई विल बी पेशेंट आई विल नेवर चैंट अंटिल एवरीवन गोज बैक होम बैक टू गॉडहेड. नहीं तीनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए जैसे आयुर्वेद में है ना कफ वात पित्त तीनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए कोई भी एक ज्यादा कम हो गया तो तकलीफ होती है. वैसे ही ये तीन हमारे जैसे कफ वात पित्त शरीर के लिए वैसे हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उत्साह निश्चय और धैर्य और तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णु अमानिन मान देन कीर्तनीय सदाहरि. उस भाव में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय.